ओम शांति।
भट्टी का आज पहला सत्र है। आदरणीय शिलो दीदी जी का हम एक हाथ की ताली से तहे दिल से स्वागत करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस बार हमारी परम आदरणीय श्रद्धे दादी जानकी जी हमेशा चार शब्दों का महामंत्र देते हैं। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है और मुझे क्या बनना है। तो दादी जी के इन्हीं चार बातों को भट्टी का हमने थीम बनाया है और इसीलिए आज जो दादी जी की पहली बात है हम बहुत गहराई से रियलाइज करें मैं कौन। तो मैं आदरणीय शीलू दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ ये पहला जो थीम है, थीम का पहला जो भाग है स्वस्थिति की जागृति, स्वस्थिति की महसूसता, इस विषय पर हमें गहराई से जाकर के रियलाइज करेंगी आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं कौन हूँ ये इतनी बड़ी पहेली है जिस पहेली का हल केवल बाबा ही दे सकता है। दुनिया में तो केवल ये कहते आए हैं, पूछते आए हैं मैं कौन, मैं कौन हूँ, हु एम आई। बड़े बड़े फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्री भी यही कह गए अपने दर्शन में मैं कौन हूँ। लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न खुद भी पाया या अनुभव किया। द्वापर युग से तो मनुष्य देह अभिमान में ही था और अगर कहा भी मैं आत्मा हूं तो भी उस देह अभिमान में ही रहकर कहा, क्योंकि मैं आत्मा हूं एक तरफ कहा और फिर कह दिया मेरी आत्मा। हाँ, तो जैसे आत्मा अलग हो गई मैं अलग हो गई। तो बाबा कहते हैं मेरी आत्मा कहना भी यह देह अभिमान है, क्योंकि मैं शरीर हो गया अगर आत्मा मेरी है तो। तो देह अभिमान और स्वमान दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन मनुष्य इस अंतर को कहाँ जानते हैं। वो देह अभिमान में है और कहते हैं हमारा तो अपना स्वाभिमान है, स्व का अभिमान है। स्वमान अपने शब्दों में कहते हैं, और कौन सा स्वाभिमान है जो देह अभिमान पर ही आधारित है, अपने कुल का, अपनी जाति का, अपनी भाषा का, अपने प्रांत का, अपने देश का भी। हाँ, जिसको स्वाभिमान समझते हैं, पर बाबा कहते हैं ये सब स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। स्वमान माना ये आत्मा का मान है और देह भान, देह अभिमान ये आत्मा का अभिमान है, ये देह का अभिमान है। तो सूक्ष्म अंतर बहुत जबरदस्त है। मिसाल के तौर पर कोई ने मुझे गाली दी, गुस्सा किया, अब शब्द कहे और मैं कहूं मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं भी कम नहीं हूं, मेरा भी अपना स्वमान है, इसने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दी। तो स्वाभिमान और स्वमान वास्तव में वो देह अभिमान को ही मान के बैठे हैं, क्योंकि जो सच्चा स्वमान है उसमें उसको यह कभी संकल्प नहीं आएगा कि इसने मेरी इंसल्ट कर दी, इसने मेरा अपमान कर दिया। पर अभिमान जिसको होगा उसको जरूर आएगा कि मेरा इसने अपमान किया, क्योंकि जहां अभिमान है वहां अपमान महसूस होता है, और जहां स्वमान है वह अभिमान महसूस नहीं होता। तो स्वमान क्या है कि मैं तो एक आत्मा हूं, तो आत्मा का मान अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरा यह स्वमान है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे कोई भी अशांत नहीं कर सकता, ये है स्वमान। परंतु ये कहना कि मैं तो मेरा स्वाभिमान है, मैं इतनी ऊंचे धर्म का ऊंची जाति का हूं और उसको इसने उसको अपमानित कर दिया, तो बाबा कहते स्वमान जहां है वह अपमान महसूस नहीं होता, क्योंकि आत्मा का मान है। तो स्वमान क्या हुआ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे कोई भी अशांत कर ही नहीं सकता है, चाहे कोई गाली भी दे, चाहे कोई अपशब्द कहे, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं कभी अशांत नहीं हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परंतु जिसको मैं शांत स्वरूप आत्मा ये स्वमान नहीं है, तो देह देह की जाति भाषा आदि जो उस प्रकार से अभिमान है वो जल्दी अपमानित हो जाएगा। तो स्वमान और अभिमान में बहुत गहरा अंतर है, और जहां स्वमान है वहां आत्मा के साथ जितनी भी बातें हैं वो सब जुड़ जाती है, स्वरूप, स्वदेश, स्वचिंतन, सब स्व के साथ आत्मा के साथ जुड़ जाती है, स्वपिता। तो जैसे ही मैंने कहा मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा के सारे स्वमान बुद्धि में आ जाते हैं, लेकिन देह अभिमान के वश जो है वो सारे जितने भी देह से संबंधित लकब है वो ही बुद्धि में रखेगा। इसलिए थोड़ा भी अगर किसी ने उसके विरुद्ध कहा तुरंत उसको अपमान महसूस होगा कि ये क्या समझता है अपने आप को, मुझे इसने ऐसे क्यों कहा। कभी कभी बाबा अभिमान के दोनों पहलू बताता है, स्वमान का तो एक ही पहलू है, एक ही स्वरूप है कि आत्मा के जो गुण हैं, मैं ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये जो आत्मा के सात मूल गुण हैं, इनका मैं अपने अंदर मनन करूं, चिंतन करूं, उसी स्वमान में रहूं, क्योंकि ये गुण मेरे कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, ये मेरी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, मेरी निजी चीज है, मेरी अपनी चीज है, इस पर कोई ठेस भी नहीं लगा सकता है, छिपके ले भी नहीं सकता है, चाहे शरीर भी छूट जाए लेकिन मेरी शांति, मेरी खुशी कोई नहीं छीन सकता है, शरीर तो चला जाएगा क्योंकि वो मेरा नहीं है। पर ये तो आत्मा का स्वभाव है, तो जो मेरा स्वभाव है, स्वरूप है, स्वदेश है, उसको कोई छीन नहीं सकता, ये स्वमान है। परंतु जहां अभिमान है वहां फिर दो पहलू आ जाते हैं। एक है सांसारिक उपलब्धियों का इतना घमंड कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये भी अभिमान तो है, अपने नाम का, रूप का, कलाओं का, विशेषताओं का, धन का, जाति का। तो एक और है ये अभिमान जिसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उपलब्धियों का घमंड। और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम कहेंगे ये क्या समझता है अपने आप को। किसी को अपने बाजुओं का अभिमान होता है, मेरे मसल्स, तो कहेगा देखो हाँ इसमें दम है, तो मेरे सामने क्या कर सकते हो, एक ठौंसा लगा दूंगा तुम धराशायी हो जाओगे, ये भी अभिमान है। तो एक तरफ है इस प्रकार का अभिमान, पर उसका दूसरा पहलू अभिमान का क्या है, इसको भी बाबा दे अभिमानी कहते हैं। और वो है मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ, कोई क्षमता ही नहीं है। तो अगर इस प्रकार से अपने अंदर ये बातें आती है तो बाबा कहते हैं ये भी दे अभिमान है। मैं कैसे करूँगी, ये मेरे से ज्यादा अच्छा करेगा, मैं तो नहीं कर सकूंगी। तो अपने अंदर हीनता की भावना लाना ये भी दे अभिमान का ही दूसरा रूप है। लेकिन कई इस हीनता की भावना को दे अभिमान नहीं समझते, केवल उपलब्धियों के घमंड को ही दे अभिमान समझते हैं। तो इसीलिए उसी का ही नाम वर्णन करते हैं, अपनी कमी कमजोरियों का वर्णन कम करते हैं। पर जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं वो तो हर बात में हीनता ही लाएंगे, उनको बदलने का कभी संकल्प आएगा ही नहीं। और जो अभिमान में होगा, बहुत बड़ा चढ़ा के अपना वर्णन करेगा, उसको भी नहीं संकल्प आएगा कि मैं अपने अंदर परिवर्तन करूं। कई लोग जब हम लोगों से मिलते हैं और हम उनको कैसे मेडिटेशन करते वो बताते हैं, तो एक प्रश्न मन में वो लोग जरूर उठाते हैं या पूछते हैं कि बहन जी आप कहते हो जैसे आज का स्वमान है, मैं क्या नाम है क्या, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अभी मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ समझो, हम उनको कहते भी हैं कि आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो, तो कहते मैं कैसे शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, जीवन में कितने पाप किए हैं मैंने, कितने न जाने झूठ बोले होंगे, कितनी चोरी की होगी, समझो किसी ने कुछ ऐसे भी गलत काम किए, हेरा फेरी, बेईमानी, यहाँ तक कि हत्याएं भी, बहुत कुछ है दुनिया में। और उसको कहो कि आप कहो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, कहेगा क्या कहेगा, ठीक है मैं तो नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में आप हो शुद्ध और पवित्र आत्मा, लेकिन आप जानते नहीं हो। कहते जानता नहीं हूं क्या, ये तो मैंने तो जीवन में ऐसे गलत कर्म किए हैं, तो पता है ना मैंने किए, मैं कैसे कहूँ मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो बहुत अशुद्ध हूँ, मैं तो बहुत अपवित्र हूँ। तो बाबा कहते अच्छा चलो आप कहते हो मैं बहुत अशुद्ध हूँ, मैं बहुत अपवित्र हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मान लो ये भी आपने कहा, मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, चलो ये नहीं मानते, पर ये मैं नीच हूँ, पापी हूँ, भक्ति में क्या कहते आए, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, आज भी बाबा ने कहा ना, जो भगत होगा एकदम लास्ट कोटि वाला, वो भी कहेगा मुझे चरणों में ही रख दो, अपने चरणों में ही रख दो। तो मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, पापी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल मिट्टी, मूर्ख, निर्बल, पता नहीं क्या 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 शब्द कहते हैं। और कई लोग तो फिर टू साइडेड है, भगवान के आगे तो ये सब कहेंगे और दुनिया के आगे क्या कहेंगे, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो फलाना हूँ, और भगवान के आगे मैं तो दासों का दास हूँ। तो दासों का दास भी कहेंगे अपने आप को, भगवान के आगे या दुनिया के आगे कहेंगे मैं सेठ हूँ। और अगर भूल से भी किसी ने उसको कह दिया तुम पापी हो, मान लो पाप तो बहुत करता है, पर भूल से कह भी दिया तो भी स्वीकार करेगा, हाँ तुम मुझे पापी कहते हो, मुझे गाली देते हो, क्या समझा है तुमने, क्या मैंने पाप किया, क्योंकि वो समझता मैं तो सही हूँ, मैं तो कहाँ गलत हूँ। पर खुद ही जाके कहते मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, सबने कहा होगा, आप लोगों ने भी कहा होगा भक्ति में, नहीं कहा, कहा कि नहीं कहा, कहा है ना, नहीं कहा, ये कहते नहीं कहा, किसने कहा, नहीं कहा, बच्चे सोचेंगे हम तो बचपन में ज्ञान में आ गए, पता ही नहीं वो क्या होता है। खैर, जो भक्ति मार्ग में थे उन्होंने तो ये तो कहा ही होगा। फिर भगवान से कृपा भी मांगी होगी, कृपा करो भरता, फिर कहा होगा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, तो विषय विकार मिटाओ पाप हरो ये भी कहा। लेकिन जब भगवान आकर कहते कि अच्छा ये तो तुमने कह दिया भक्ति में, अब मैं आया हूँ तुम्हारे विषय विकार दूर करने, तो फिर क्या कहते, अरे इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो विषय विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी, अरे तुमने ही तो कहा कि मिटाओ, पतित पावन, हे पतित पावन आओ तो मैं आया हूँ, तो पावन बनो। चलो आप कहते भी हो मैं तो पतित हूँ, तो पावन बनोगे भी कैसे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ ये नहीं कहने में आता है, थोड़ा लगता है कि ये तो सच नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हूँ नहीं, तो फिर बनोगे कैसे, फिर ये दूसरा प्रश्न है कि बनोगे कैसे, तो फिर चुप हो जाते, बनेंगे कैसे, बस भगवान की कृपा होगी। हाँ यही समझते हैं, वो कृपा होगी तो बन जाएंगे। तो समझो हम कहेंगे अच्छा भगवान की अभी कृपा हुई है आपके ऊपर, तो फिर सोचेंगे। सोचेंगे, देखेंगे, फिर गे की भाषा यूज करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे स्वमान नहीं आएगा, इससे हम शुद्ध पवित्र नहीं बन सकेंगे, लेकिन मैं हूं ये संकल्प जैसे ही आया आप पवित्र बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ही है ये पवित्रता। कहते ना शांति आपके बाहर नहीं है, खुशी आपके बाहर नहीं है, सुख आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। आप ये संकल्प करो आप में है तो आप अनुभव करना शुरू कर देंगे। पर आप कहेंगे मेरे अंदर नहीं है तो शक्ति कभी नहीं अनुभव होगी, क्योंकि आप जैसा ही जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको अनुभव होने लगेगा। अगर आपको कोई कमी महसूस होती है अपने अंदर तो वो श्रेष्ठ संकल्प करने से ही कमी भरेगी, कमी कोई ऐसे नहीं बाहर से भरेगी। शरीर के अंदर कोई कमी है, जैसे आज बाबा ने कहा कि डॉक्टर है वो देखता है विटामिन ए की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है, डी की कमी है, क्योंकि वो उसी अनुसार वो बीमारी आती है। तो भाई ये विटामिन की कमी है, मल्टी विटामिन की कमी है, तो चलो इंजेक्शन लगा करके वो शक्ति भरेगा। मल्टी विटामिन की इंजेक्शन आती है, नर्व्स के अंदर ताकत नहीं है तो वो उसकी इंजेक्शन देगा, न्यूरोबिन, ये सब बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसमें ब्लड की कमी है तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तो चलो कैसे उसको फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट, क्योंकि आयरन से बनता है, तो बाहर से लेगा और उसको अंदर शक्ति का अनुभव होगा। परंतु कोई ये समझे कि भाई मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर खुशी नहीं है, मेरे अंदर ये प्यार नहीं है तो वो बाहर से तो लेगा नहीं, वो कहां से मिलेगा? वो आपकी सोच में ही है, आपको अंदर से ही उसको अनुभव करना है। तो शांति आपसे कितनी दूर है, हम कहते हैं एक सोच की दूरी पर है बस। अगर सोचो तो एकदम अशांत, और अगर सोचो एकदम शांति, एक सोच की दूरी पर। और बाबा वो सोच देते हैं, क्या है वो सोच? शांति का अनुभव करने के लिए मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति धाम का वासी और शांति के सागर शिव बाबा की संतान। बस ये वाक्य अंदर में सोचा, शांति तो आपके पास ही है, वो तो आपके गले का हार है। तो इसीलिए स्वमान माना, आत्मा अपने मान में टिके, अपने स्वरूप में टिके, अपने सच्चे स्वभाव में टिके। तो सच्चा स्वभाव आत्मा का है ही ये सारे गुण, और ये गुण बाहर से नहीं आएंगे, ये आत्मा के चिंतन से ही अनुभव होंगे। इसीलिए बाबा ने आज कहा मनन शक्ति। वो तो चलो भोजन बाहर से खाते हैं, फिर वो पेट में जाता है, आंतों में जाता है, हजम होता है, उससे खून बनता है, और फिर शक्ति का, शारीरिक शक्ति का अनुभव होता है। परंतु ये तो चिंतन की स्थिति है, मनन की स्थिति है, मंथन की स्थिति है, उसके आधार से ही शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि ये शक्ति तो सोई हुई है। इसलिए क्या मिसाल देते हैं कि समझो एक बहुत ताकतवर बलशाली व्यक्ति है, रेसलर है, बड़ा लंबा चौड़ा है, वो ताकत वाला, शारीरिक ताकत वाला भी, परंतु वो सोया हुआ है, मान लो नींद है उसको, गहरी नींद भी तो आएगी, पर उस गहरी नींद में तो उसको पता ही नहीं है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसा हूँ। और कई लोग ऐसे करते हैं ना, जिसको मारना होगा ना, वो जब सोए होंगे ना तभी अटैक करेंगे, जागते हुए को नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी कायरता है, क्योंकि उसकी शक्ति सोई हुई है, उस समय जाग रहा है, और फिर करे तो लड़ाई करे, पर वो लड़ाई कैसे करेगा, तो सोया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वो जब जागेगा तब उसको शक्ति का अनुभव होगा जो उसके पास सोई हुई है। परंतु वो फिर भी चलो कहां से वो बल पाया, खाने पीने कसरत इन सब से पाया, पर ये बल ऐसा है आत्मा का जो खाने पीने से नहीं आएगा। तो आत्मा का जो संकल्प है, फूड फॉर थॉट जिसको कहते हैं, मन का भोजन, वो हम कौन सा लेते हैं उसके आधार से अंदर की शक्ति आएगी। इसीलिए बाबा ने आते ही सबसे पहले पहला ही पाठ क्या दिया हमको, तुम आत्मा हो। और सचमुच देखा जाए अंतिम पाठ भी यही है, पहला पाठ सो अंतिम पाठ, क्योंकि अंत में भी यही स्थिति हमारी होनी है, इसमें आत्मा उड़ रहा हूं, कर्मातीत बन गया, सब बंधनों से आत्मा मुक्त हो गई, अब मैं आत्मा स्वतंत्र हूं और उड़ गया, ये देह का कोई बंधन नहीं। तो अंतिम पाठ भी एक सेकंड का है, और पहला पाठ भी आत्मा का एक सेकंड का ही है, बस स्विच ओवर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ है तो अंधेरा है, स्विच ऑन है तो प्रकाश है। तो अब तक जो हम अंधेरे में थे, और दोनों प्रकार की जो धारणाएं हैं, अभिमान और साथ साथ हीनता, उपलब्धियां, उपलब्धियों का घमंड या हीनता की भावना, ये दोनों ही बातें बाबा कहते अज्ञान है, ये सच्ची समझ है ही नहीं। तो बाबा आकर के जब स्वमान हमें देते, तुम कौन हो, जैसे ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले स्वमान यही दिया, तुम कौन हो। हाँ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और विष्णु चतुर्भुज के ने क्या स्वमान दिया बाबा को, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे समान हो, ये उसको समान दे दिया। तो बाबा को तो समझ में नहीं आया, किसका मोबाइल चल रहा है किसको, तो उस बाबा को तो समझ में नहीं आया कि मैं विष्णु चतुर्भुज कैसा। वो तो भक्त थे बाबा, विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु का ही अपने आप को दास समझते थे। मैं निर्गुण हारे में को गुण नाई, ये बार बार बाबा कहते रहते थे। तो बाबा के अंदर में वो विष्णु चतुर्भुज की केवल बस पूजा करनी है, पूजा करनी है, ये हमारे इष्ट है, बस इतना ही ज्ञान, इतनी समझ थी। पर जैसे ही विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और उनको समान दिया विष्णु ने कि तुम मेरे जैसे हो, तो बाबा के मन में तो और ही शंका उत्पन्न हो गई, मैं इन जैसे कैसे हूं, मैं तो इनका दास हूं, सेवक हूं। क्योंकि यही भक्ति में कहते थे, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं। पर जब ये स्वमान मिला तो बाबा को महसूस होने लगा कि सचमुच मैं इतना श्रेष्ठ हूं। फिर दूसरा स्वमान क्या मिला, बाबा को विनाश का साक्षात्कार करा करके वैराग्य का वैराग्य दिलाया, परंतु फिर जो सतयुग का साक्षात्कार कराया, स्वर्ग का साक्षात्कार कराया, और उसने यह स्वमान दिया कि आपको ऐसी दुनिया बनानी है, तो बाबा को और संकल्प आया, मैं ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा, ये स्वमान दिया, तुमको ऐसी दुनिया बनानी है, इतना बड़ा कार्य भगवान ने उनको दिया। लेकिन बाबा को समझ में नहीं आया, और वो न समझने के कारण बाबा महसूस करते कि कोई शक्ति काम करिए, मेरी शक्ति नहीं है। फिर जब साक्षात्कार बाबा से होने लगे, श्री कृष्ण का साक्षात्कार औरों को होने लगा, तो भी बाबा को आश्चर्य होता था, ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये मेरी शक्ति नहीं है। यानी उसको आश्चर्य लगता रहा, क्योंकि बाबा उनके द्वारा अपना कार्य करवा रहे थे। स्वमान तो दिया विष्णु ने, बाबा ने भी स्वमान दिया कि ऐसी नई दुनिया तुमको बनानी है, लेकिन शंका उत्पन्न हो, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे अर्जुन को भी यही शंका थी, भगवान ने अर्जुन को कहा बस चलो युद्ध करो, खड़े हो जाओ मैदान में, आ जाओ और युद्ध करो। तो क्या शंका पैदा हुई अर्जुन में, मैं कैसे करूंगा ये मेरे मामा चाचा काका, मैं इनको मारूं, इनको ये तो पाप हो जाएगा। तो अपनी जो योग्यता है, शक्ति है, उस वो तो भूल ही गया सब कुछ। तो भगवान ने, हाँ, जो दूसरा अध्याय है पूरा आत्मा का ज्ञान है, जो भगवान ने कहा इनको आत्मा देखो, इनको आत्मा देखो, ये तेरे मामा चाचा काका ने, ये आत्मा है, आत्मा तो अविनाशी है, तुम आत्मा को तो मार नहीं सकते हो, बस तुम अपना फर्ज पालन करो, बस और कुछ नहीं सोचो, आत्मा को तो मार नहीं सकते हो। तो कहा कि आत्मा है तो ठीक है, परंतु मैं तो इनको ये देह रूप में देख रहा हूं, आत्मा कैसे देखूं, यही है, यही उसकी बार बार शंका ही है उसके मन में, संशय ही उत्पन्न होता जा रहा है, भगवान की बातें समझ ही नहीं रहा है। तो बाबा का भी यही हाल था, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। लेकिन फिर शिव बाबा ने अपना कार्य कैसे शुरू किया, जो साक्षात्कार कराए, और जैसे गीता, बाबा को लगा कि गीता का पाठ मैं करूंगा, तो क्योंकि बहुत आने लगे बाबा के पास, बाबा वैसे गीता का पाठ करते थे, तो बाबा को लगा इतने सारे आ रहे हैं, मैं और गीता ही मंगाऊं। तो गोरखपुर में गीता प्रेस है, गोरखपुर यूपी में, तो वहां से बाबा ने 500 गीताएं मंगाई कि एक एक को हम देंगे और उस समय गीता का पाठ करेंगे। अब बाबा को तो पता ही नहीं था कि शिव बाबा की शक्ति मेरे द्वारा कार्य कर रही है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था। अब सबको गीताएं दे दी, और जैसे ही गीता का जो पुस्तक है उसको अभी खोला ही नहीं था, शिव बाबा की वाणी चलने लगी। तो बाबा को लगता था ये कौन बोल गया, मैं तो नहीं बोला मैंने तो कहा ही नहीं। तो बाबा के अंदर में वो उस समय जो अपने प्रति जो हीनता की भावना तो थी ना, भक्ति थी ना, दासत्व क्या कहेंगे, वही भावना थी हा? तो दास पने की भावना थी, सेवक पने की भावना थी, वो वैसे तो वो अच्छी भावना है, परंतु स्वमान आत्मा का ये तो उनको पता ही नहीं था। तो अर्जुन के अंदर भी यही बातें थी, बिल्कुल कैसे गीता फिर रिपीट हो रही है। फिर जब अर्जुन नहीं समझने लगा तो फिर दूसरा रूप दिखाया गीता में कि अर्जुन को उसको स्वमान की याद दिलाई, हे अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, पहचानो अपने आप को, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम कभी हार नहीं सकते हो, क्योंकि क्षत्रियों के लिए तो बहुत कुछ वर्णन है कि क्षत्रियों के लिए क्या गया है, क्या कहा गया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी रघुवीर रीत सदा चली आई। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये तो रघुवीर रीत है, ये क्षत्रिय कुल की रीत है। स्त्रियां तो अपने पति को तिलक लगाती थी, विजय का तिलक, और भेजती थी रण में कि लड़ो, और हार खा के वापस कभी नहीं आना, हार खा के नहीं आना, अगर आना है तो जीत कर आओ, या तो वहीं शहीद हो जाओ। एक बार एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि भारत में तो कितने क्षत्रिय थे, सब राजाई घराने के थे, सब राजपूत थे, तो इतने सारे राजपूत सब कहाँ चले गए, नहीं इतने जल्दी जो राजपूतों की संख्या कम है कंपैरेटिवली, और जो वैश्य शूद्र मतलब ब्राह्मण जे, पर राजपूतों की संख्या कम है। तो क्या बस इनके अंदर जो ये था ना कि या तो जीत करके आओ या तो वहीं शहीद हो जाओ, वापस नहीं आओ। और फिर जब वो मर जाते थे तो उनकी स्त्रियां फिर जौहर करती थी, तो जौहर जो दिखाया ना चित्तौड़गढ़ में ना, तो वो स्त्रियां भी फिर ओम शांति, चलो पति तो गए तो साथ साथ स्त्रियां भी गई। तो मानो ऐसे राजपूतों की जो संख्या है ना वो कम होती गई। लेकिन जो भी अपने आप को राजपूत अभी भी समझता है वो तो अपने आप को योद्धा समझता है ना, योद्धा समझते हैं। और ब्राह्मण का फिर दूसरा रूप है, वो तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। खैर, तो जब उनको कहा आप क्षत्रिय हो, आप कभी हार नहीं सकते हो, आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, अगर वापस जाएंगे तो आपके जो आगे जो आपके वंशावली है वो आपको कहेंगी, कायर मानेगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो कायर थे, इसीलिए वापस नहीं जा सकते हो। बेचारा असमंजस में पड़ गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। ब्रह्मा बाबा के आगे भी असमंजसता बहुत आई, क्योंकि शिव बाबा ने आदेश दिया कि अभी ये सारा जो भी धन अचल चल अचल प्रॉपर्टी ये सब माताओं के हवाले कर दो। अब बाबा के सामने परीक्षा आई, बाबा का जो बड़ा बेटा था वो तो हक मांगने लगा बाप से, बाकी जो छोटा था नारायण दादा वो तो छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था, लास्ट था, तो वो तो बाबा के साथ ही था, लेकिन बड़ा बेटा तो शादीशुदा था, तो वो तो हक मांगने लगा। अब भगवान का माने या जो कलयुगी रीत रसम या उसको माने, लेकिन जो भगवान ने कहा उसको ही माना उसको। और बच्चे ने बहुत विरोध किया, आपको लोगों को मालूम होगा, उन्होंने कहा हमको, उसने कहा चाहिए, तो बाबा ने कहा ठीक है आपको देंगे, क्योंकि माताओं बहनों के नाम पर कर दिया, खुद तो बिल्कुल न्यारे हो गए, ये शिव बाबा के आदेश अनुसार सब कुछ किया। तो कहा कि अच्छा अगर तुमको चाहिए, बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए, तुम ले जाओ, उधार ले जाओ, उधार ले लो फिर वापस करना। वो कहे क्यों, हमारा तो हक लगता है। तो मानो उसने विरोध किया, पर बाबा ने उसका सामना किया, बाकी तो सारे परिवार ने साथ दिया। तो बाबा ने कहा ना कि मैंने कोई संन्यास थोड़ी किया, परिवार भी तो साथ में था, सबको कहा साथ में रहो, और ही एडिशन हो गया उस दिन की बाबा की मुरली थी, है ना, और ही दूसरे आने लगे, और जो आए समर्पित होते गए, बाबा का परिवार बढ़ता गया, बाबा ने तो किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, वो छोड़ के चले गए वो और बात है, पर बाबा ने नहीं छोड़ा। लेकिन बाबा के सामने परीक्षाएं तो बहुत आई, परंतु नष्टो मोह सहज बने, ये जरूर विशेषता थी अर्जुन के लिए। तो बताया लास्ट तक उसको असमंजस ही था, फिर जब फिर गीता में जैसे आता है जब उसको कहा तुम क्षत्रिय हो तो भी कहा ठीक हूं लेकिन ये मैं कैसे मार सकता हूं, क्योंकि मोह वश वह था। फिर भगवान ने तीसरी युक्ति रची उसका मोह भंग करने के लिए, अपने स्वमान में स्थित करने के लिए। और वो क्या युक्ति रची भगवान ने, कहा कि देखो अगर तुम इस युद्ध में जीतोगे तो विजय तो तुम्हारी निश्चित है ही है, परंतु चलो आप सोचते हो पता नहीं, तो अगर तुम जीतोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, और विजय तुम्हारी निश्चित है, तुमको स्वर्ग का अधिकार मिलना है, इसलिए बस केवल निमित्त बन करके मारो, निमित्त बन के। वो कही मुझे स्वर्ग वर्ग ऐसा चाहिए ही नहीं अर्जुन को वह स्वर्ग भी कुछ नहीं लगा, पर मारो कैसे, बस मोह के वश था। तो फिर भगवान ने चौथा तरीका अपनाया, वो क्या था, उनको साक्षात्कार कराना शुरू कर दिया। क्या विनाश दिखाया, और उसमें क्या दिखाया, ये सारे तेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई ये जो कुछ है सब मर गए, शमशान दिखा दिया कि ये सब मरने वाले हैं, इनकी मौत निश्चित है और आपके लिए स्वर्ग भी निश्चित है। लेकिन वो कहता है ये सब मरने वाले और मैं निमित्त बनूंगा इसके लिए, ऐसा मुझे पाप नहीं करना है अगर अपने आप मरते और बात है, पर मैं निमित्त बनूं इनके मारने के, सब मर जाएंगे और ये मैं निमित्त बनूंगा तो ऐसा पाप, ऐसा स्वर्ग किस लिए जो इतना बड़ा पाप करूं, तो वो भी कबूल नहीं है। तो इसलिए भगवान की कोई भी बात कबूल नहीं थी। और क्या कारण था जो कबूल नहीं थी, कि ये नहीं समझ पाया कि ये मुझे कह कौन रहा है। वो क्या समझ रहा था कि ये तो मेरा मित्र है, वो मित्र मुझे कह रहा है। उस समय ये बुद्धि में नहीं आया कि भगवान मुझे कह रहा है, वो साकार रूप ही देख रहा था। पर जब अंत में विराट रूप का साक्षात्कार कराया और उसमें दिखाया कैसे सब मौत के मुंह में जा रहे हैं, जहां ज्योति का साक्षात्कार जो कुछ वो लास्ट का दृश्य है जब वो दिखाया, तब उसको महसूस हुआ कि अरे ये तो मुझे भगवान कह रहा है, और मैं इतना अपनी बुद्धि चला रहा था अभी तक अपने अपने अभिमान के वश होकर के। फिर आखिर पैर पड़ा, घुटने टेके और कहा कि अब आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूं, पर आगे फिर सोचना नहीं। पर भगवान ने ये भी कहा करना तुमको है क्योंकि पाना तुमको है, मैं केवल तुमको रास्ता दिखाता रहूंगा, युक्ति बताता रहूंगा, बस मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, कई कहते हैं भगवान हमको मदद क्यों नहीं करता। कल भी परसों की मुरली थी या दो तीन पहले दिन की मुरली, भगवान आप लोग कहते हो आपको भगवान पढ़ाता है, भगवान आपके साथ है, तो आपको भगवान मदद क्यों नहीं करता। तो बाबा क्या कहते हैं, वो तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब तो चुक तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि हिसाब किताब नहीं चुक तो करना पड़ेगा, लेकिन ये निश्चय है कि भगवान हमारा साथी है, तो ये विघ्न ये माया हमको कुछ नहीं कर सकेगी, हम विजयी जरूर बनेंगे क्योंकि अंदर में वो निश्चय है। अब ये है स्वमान, जिसको बाबा कहते हैं कि इस नशे में रहो, इस रुहाब में रहो, मैं कौन, तो मैं विजयी रत्न हूं, मैं नूरे रत्न हूं, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन हूं। इसलिए बाबा कहते रोज ये स्वमान धारण करो, तो मैं आज जैसे बताया पूज्य पवित्र आत्मा हूं, या जो स्वमान बाबा हमें देते हैं अगर वो समझते हैं तो माया मेरे पास आ नहीं सकती। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ये निश्चय है, तो क्रोध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि क्रोध वो कौन करते हैं जो अशांत है, क्रोध कौन करते हैं जो कमजोर है, क्रोध कौन करते हैं जो अपने स्वमान में स्थित नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब वो कमजोर है निर्बल है और उसको वो स्वमान नहीं है तो दया आएगी क्रोधी पर, न कि गुस्सा आएगा। पर मैं तो जानती हूँ ना कि मैं कौन हूँ, इसलिए क्रोधी पर हम क्रोध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अपनी शांति की शक्ति उनको देंगे। तो ये है स्वमान। तो इसीलिए स्वमान और अभिमान ये दोनों के बीच का ये सूक्ष्म अंतर पहचानना है। अभिमान देह से संबंधित है और स्वमान आत्मा से संबंधित है। तो मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकता हूँ जो मुझ आत्मा के स्वमान के विरुद्ध हो। कोई अशांति का कर्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि क्रोध अशांति फैलाता है। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, ये काम वासना ये तो देह का स्वरूप है, ये तो पाप का स्वरूप है, क्योंकि देह अभिमान का ही स्वरूप है। ये सब इंद्रियों का ही आकर्षण है। ये पांच विकार क्या है, काम वासना क्या है, इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ टच, चमड़ी का आकर्षण, और क्या है, पांच इंद्रियों का आकर्षण ही तो विकार है। काम वासना चमड़ी का आकर्षण है, और चमड़ी का आकर्षण कैसे खींचता है, छोटा सा उसका रूप क्या है चमड़ी के आकर्षण का। हम एक म्यूजियम में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि कृपया हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, यहाँ पढ़ते भी हैं और फिर क्या करते हैं, देखे तो कैसा है, मुलायम है, कितना मुलायम है, क्या है। तो ये चमड़ी का आकर्षण तो उसका सबसे विकराल स्वरूप है काम वासना, वो भी चमड़ी का ही आकर्षण है। फिर क्रोध क्या है, गुस्सा कब आता है, सबसे पहले आंखों से दिखाई देता है, आंखें, आंखें मन का दर्पण है, चेहरा तो मन का दर्पण बाद में, पहले आंखें हैं। अंदर में क्या चल रहा है सबसे पहले आंखों से दिखाई देता है, मुख से तो बाद में आएगा, हाथों से बाद में आएगा, पहले आंखों से दिखाई देता है। ये भौहें चढ़ जाती है मस्तक भौ ये सब चढ़ जाता है और आंखों से गुस्सा आता है। तो क्रोध क्या है, ये आंखों का रस है, ऐसे गौर घूड़ के देखते हैं तो ये क्रोध का एक स्वरूप है। फिर लोभ क्या है, तो वो चमड़ी का रस, वो नेत्र रस, और लोभ क्या है, ये जीभा रस, जीभ रस, तो जीभ का रस है। चलो धन भी कमाना है, ये भी क्यों कमाना है, ताकि अच्छा खा सकूं, अच्छा पी सकूं, अच्छा पहन सकूं, मतलब धन कमाने का लक्ष्य, तो ये लोभ की वृत्ति है। तो फिर मोह क्या है, ये चौथी कौन सी इंद्रिय है, मोह का वश, मोह के वश जो होता है ना, वो सदा ये सोचेगा बस उसको गले लगाऊं, उसको गले लगाऊं। और कई तो ऐसे ना वो सुगंधी उनकी लेते रहेंगे, हाँ, जिससे मोह होता है ना, तो उसकी उसकी अंदर की भले वो दुर्गंध भी क्यों ना हो लेकिन उसको वो सुगंध ही समझेंगे, क्योंकि मोह के वश है। तो नाक मोह, और अभिमान अहंकार कान, ये कनरस, अगर किसी ने मेरी ग्लानी की या कुछ किया कान खड़े हो जाते, इसने ऐसे मेरे लिए कहा, तो कान खड़े हो जाना माना वो अभिमान। तो ये पांच इंद्रियों के ये पांच रस जो है ना, ये पांच विकारों का प्रतीक है। कौन से याद आया, चमड़ी का आकर्षण काम वासना, फिर आंखों का क्रोध, फिर जीवा का लोभ, और मोह किसका, नाक, और अहंकार कान, ये पांचों इंद्रियां आ गई। तो बाबा कहते हैं ये पांच कर्म इंद्रियां और उनके साथ जुड़ी है ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि उनके साथ ये कर्म करते, परंतु दस इंद्रियों के ऊपर फिर कहते हैं ग्यारहवीं इंद्री कौन सी है, मन, मन बुद्धि, वो तो जोड़ देते हैं, या ये उस पांच इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ वो ज्ञान इंद्री कह देते, पर बाबा कहते नहीं, मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो ये इनके ऊपर हो और मैं आत्मा इनका मालिक हूं। तो इंद्रियों का भी तो मालिक हूं, तो मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक हूं। लौकिक में आपको पता होगा बाबा डायरी लिखते थे ज्ञान मिलने से पहले। तो बाबा अपने मन को कहते थे, हे मन, तुम तो मेरे मंत्री हो, तुम तो मेरे सेवक हो, तुम तो मेरे अधीन हो, तुम ऐसी चंचलता करके राजा को तुमने अधीन बना दिया है। हाँ, मन को बाबा कहते थे लौकिक दुनिया में भी। और अगर उनका मन मना इष्ट की विष्णु की याद में रहता था, मान लो उनमें ध्यान करता था, और अगर उनका मन कहीं भटकता था ना, तो बाबा अपने आप को चमाट मारता था, थप्पड़ मारता था, यहाँ मारता था, चोटी मारता था, हे मन, हा? दुख का शरीर को देता था और कहता था मन को, हे मन, तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों बेलगाम हो रहे हो, तुम क्यों नहीं ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि मन ही वो शक्ति है जो मिलन का अनुभव कराएगी। लेकिन सबसे मुख्य कारण यही था, जो खुद को आत्मा नहीं जानता था। मैं पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ ये तो समझता नहीं था, भक्ति थी। और जैसे ही शिव बाबा ने उनको ज्ञान दिया कि तुम तो शुद्ध पवित्र आत्मा हो और सबको उसी आत्मा के रूप में देखो, तो देखो बाबा की दृष्टि बदल गई। कैसे बदल गई? हाँ, कितनी देर लगी बाबा की दृष्टि बदलने में? जो देह को देखता था वो आत्मा देखने लगा। तो कैसे अपने ऊपर बाबा ने पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कैसे पुरुषार्थ किया? बाबा दीवारों पर लिखते थे, घर में दीवारों पर बाबा लिखते थे, क्योंकि बाबा की लौकिक बहू में बाबा का बहुत मोह था। बहुत सुंदर भी थी बाबा की बहू ब्रिजेंद्रा दादी, बाबा की बहू थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ऊंचे खानदान की थी, और बाबा के लिए वो जैसे एक एडवर्टाइजमेंट थी। यानी बाबा हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, तो जवाहरात वो ज्वेलरी बनाते थे, तो अपनी बहू को बाबा राजाओं महाराजाओं के पास ले जाते थे वो ज्वेलरी पहना करके, जो नई नई ज्वेलरी, हीरों की ज्वेलरी, और वो तो बहुत सुंदर लगती थी, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी जवानी में तो थी। तो जब वो महारानी वहाँ वो देखती थी उन बाबा के बहू को, वो सोने का या हीरों का हार पड़ा हुआ, कहे मुझे ऐसा ही चाहिए। और बाबा बड़े युक्तिबाज थे, तो बाबा क्या करते थे, वो एक और लेकर आते थे साथ में, ताकि क्योंकि वो कहेगी हमको तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो जो पहनती थी बहू उसमें सुंदरी लगती थी ना। कहीं ऐसे होते जो कपड़े पहने, जो गहने पहने, उसमें सुंदरी लगते हैं। रानी तो फिर उसी आकर्षण में थी, तो उनको तो ऐसा ही चाहिए। तो बाबा कहते थे हाँ मैं लाया हूँ, या कभी कभी बाबा बहू को कहते थे, समझो नहीं भी लाया फूल से, तो बाबा उनको कहते थे ये उतार के दे दो, आपको हम दूसरा और अच्छा देंगे इनसे। तो बाबा की बहू तो बहुत ही आज्ञाकारी थी, और कैसे वो ही उतार करके और कहते थे ये नया है आपके लिए, और देते थे। बिजनेस तो ऐसे ही होती है ना। तो बाबा का अपने बहू में बहुत मोह था, पर जैसे शिव बाबा का ज्ञान मिला कैसे दृष्टि बदल गई। तो अपने आप में बाबा प्रैक्टिस करते थे, तो लिखते थे दीवारों पर, राधिका बाबा की बहू का नाम था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, ताकि वो भी पढ़े और वो भी बाबा को आत्मा रूप में देखे, क्योंकि ससुर के आगे घूंघट निकालती थी वो बहू, तो घूंघट निकालेगी ससुर के आगे। तो अब जब वो पढ़ती थी राधिका आत्मा है तो मैं आत्मा हूँ, और फिर बाबा भी कहते थे मैं भी आत्मा हूँ, ये आत्मा है, अब आत्मा आत्मा से क्या घूंघट निकालेगी। आत्मा तो एकदम, तो बाबा को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बाबा की जो युगल थी यशोदा, वो भी घूंघट निकालती थी, पति के आगे घूंघट निकालती थी। तो बाबा ने लिखना शुरू किया, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो कैसे उनके अंदर वो भी पढ़ती थी, तो उनकी दृष्टि भी कैसे बदलती गई, बदलती गई। अभी पति को पिता मान ले, ससुर को बाप मान ले, इतना सहज तो नहीं है ना। बाबा के लिए तो बड़ा सहज था। किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि बाबा को, यानी यशोदा जो बाबा की युगल थी, उसको आत्मा देखा, और तो बाबा को अपने अंदर में परिवर्तन लाना सहज हुआ, या यशोदा को सहज हुआ जो बाबा को पिता माना, किसको ज्यादा सहज लगा होगा? बाबा को। हा? यशोदा को टाइम लगा होगा ऐसे नहीं है? क्या समझते हैं जी? यशोदा को और इजी लगा होगा, वो आज्ञाकारी थी हाँ वो तो थी, लेकिन अंदर में तो पता चलता है ना, अपने अंदर में संघर्ष तो चलता होगा ना, इतने सालों तक बच्चे पैदा किए, इतने क्या नहीं सब कुछ किया लेकिन अचानक दृष्टि ऐसे बदल जाए तो टाइम तो लगता है। लेकिन बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी तो कैसे एक सेकंड में बदल गया। तो बाबा चाहते थे कि इनकी दृष्टि भी तुरंत बदल जाए, क्योंकि ऐसे नहीं कि छोड़ करके कोई जंगल में चले गए या सन्यासी बन गए, वो तो था ही नहीं, परिवार के साथ ही रहता था और ये परिवार बढ़ गया। तो कैसे बाबा ने सबको ही अभ्यास कराया कि हर एक एक दो को आत्मा देखे, आत्मा देखे। मम्मा अपने माँ के साथ आई तो मम्मा, बाबा ने शुरू किया मम्मा कहना, जबकि मम्मा तो उस समय 16 साल की थी, बाबा 60 साल के थे, कितना अंतर। पर बाबा ने शुरू किया उनको मम्मा कहना, माँ है ये आपकी अलौकिक माँ है। अब मम्मा की जो अलौकिक माँ थी वो वही मम्मा कहने लगी, वो थोड़ी कहेंगे मेरी बेटी है। तो लौकिक तो रिश्ते ही खत्म हो गए। एक सेकंड में बुद्धि कैसे बदल गई, दृष्टि बदल गई। और वहां सब सिंधी बोलते थे, सिंधी भाषा थी सिंध में। बाबा ने कहा सिंधी किसी को बोलनी नहीं है, कोई सिंधी, हिंदी तो पूरी आती भी नहीं थी वो बहनों को, वो इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी ना, सिंधी बोलते थे, जैसे जिस स्टेट की भाषा होती है तो वही बोलते हैं। तो बाबा ने एकदम मना कर दिया कि सिंधी बिल्कुल नहीं बोलनी है। तो अभी तो देखो दादियां है तो सिंधी पुरानी, लेकिन हिंदी ही बोलती है, सिंधी बोलना ही भूल गई, क्योंकि शुरू में ही बाबा ने हिंदी बुलवाया, क्योंकि बाबा जानते थे क्योंकि हिंदी चलनी है भारत में और उसी को ही महत्व दिया। तो देखो बाबा ने कैसे हद से निकल बेहद का अनुभव कराया। और बाबा कहते अंत में भी यही आत्मा हूं का ही पार्ट एक सेकंड का होगा, एक सेकंड में जो बाबा कहते हैं आपकी परीक्षा होगी, एक पेपर आउट होना है, वो एक सेकंड का ही पेपर है। पर अंतर क्या है जो और पेपर होते हैं और ये पेपर में अंतर क्या है, और जो पेपर होते हैं ना टेस्ट परीक्षाएं आती है वो परीक्षा का दिन पता होता है, स्थान पता होता है, टाइम पता होता है, कितने टाइम का पेपर है, कहाँ देना है आदि आदि, कौन सा पेपर है क्या, पर क्वेश्चंस क्या होंगे ये पता नहीं होता, क्या प्रश्न होंगे वो पेपर में वो पता नहीं होता है। और यहाँ उसका ऑपोजिट है, प्रश्न का पता है, प्रश्न एक सेकंड का है, हाँ या ना का जवाब है। क्या है प्रश्न? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हाँ या ना लिखना होता है, बस एक सेकंड का जवाब है। तो प्रश्न क्या होगा कि अंत के समय आत्मा एक सेकंड में न्यारी हो जाए, कोई भी देहधारी की उस समय याद न रहे सिवाय बाबा के, वो एक सेकंड का पेपर होगा और उसमें हार और जीत का ही स्वरूप होगा, या तो टिक मार्क हाँ या तो क्रॉस या तो हाँ या ना, बस। इसलिए एक सेकंड का प्रश्न बाबा कहते हैं, उसका उत्तर एक सेकंड का है कि अंत में किसकी याद आई। पर उस एक सेकंड की परीक्षा में पास होने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, तभी अंत में एक सेकंड जो मिलेगा उसमें केवल बाबा की याद रहेगी। क्यों बहुत काल का अभ्यास चाहिए? क्योंकि अचानक होगा, पहले नहीं बताया जाएगा। अभी अचानक ये दीवार गिर जाए, भूकंप आ जाए, दीवार गिर जाए, मान लो आप कहेंगे बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया कि दीवार गिरेगी या कुछ भी हो जाता है, उस समय कौन मुझे याद आता है? कोई देहधारी तो याद नहीं आता। तो अचानक का ही खेल होना है। तो अचानक के खेल के लिए एवर रेडी रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। और हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तीनों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि अचानक होना है, पहले से नहीं बताया जाएगा, डेट नहीं बताई जाएगी, स्थान नहीं बताया जाएगा। और अचानक होने के लिए हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हो जाए। और कभी भी हो जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तभी तो एवर रेडी होंगे, तभी अचानक का सामना कर सकेंगे और पास हो सकेंगे। अगर ये कहेंगे कोई बात नहीं, जब विनाश होगा ना तब मैं बहुत दौड़ूंगी, बहुत दौड़ूंगी, बहुत अभ्यास करूंगी, बाबा कहते नहीं होगा। और आज भी बाबा ने कहा उस समय आपको अपने लिए टाइम ही नहीं होगा, अपने लिए टाइम नहीं होगा, आपने जितना पुरुषार्थ किया है वही काम आएगा। आप लोगों को मालूम होगा ये जो मिलिट्री वाले ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब में ये एक उनकी प्रथा है, क्योंकि यहाँ भी आर्मी है, एयरफोर्स है, सीआरपी है, सब है माउंट आबू में। तो वो बताते हैं, इनके पास हम जाते हैं सेवा करने के लिए, तो वो बताते हैं कि दो बार इनको सरहद पर भेजते हैं वहां के लिए, और एक बार उनको पीस प्लेस, पीस यानी शांति के स्थान पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो 3 महीना ट्रेनिंग करके फिर जाएंगे, फिर दूसरी जगह 3 मास, फिर 2 जगह, फिर उनको ट्रेनिंग करने के लिए दोबारा। तो ट्रेनिंग करना माना ये शांति का पीरियड है, क्योंकि उस समय तो दुश्मन नहीं है ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ माउंट आबू में ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पर सीआरपी का है और आर्मी का है। तो वहाँ जो ज्ञान सरोवर जाते हैं ना रास्ते पर, तो वहाँ मैदान है, देखा होगा आप लोगों ने। तो रात को ये लोग गोलियां चलाते हैं और गनी बैग्स होते हैं, रेत के बड़े बड़े बैग्स होते हैं, ये थैले होते हैं, तो उनको निशाना बना करके गोलियां चलाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, निशाने पर लगना चाहिए, ये नहीं कि दुश्मन उधर है और मारे वहां। तो पहले से प्रैक्टिस होगी तभी तो वहीं पर अटैक करेंगे ना, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस का स्थान है माउंट आबू। तो वो बताते हैं कि ये हम 3 मास यहाँ रहते हैं ताकि हम प्रैक्टिस करते रहें, रोज सवेरे उठ करके कसरत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये उनका शांति का पीरियड है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो समय है ये अपने लिए है, ताकि आप भर सको, जो ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, भर सको, भरपूर हो जाओ, क्योंकि बाद में आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा। इतनी आत्माएं आपके पास आएगी, तड़पती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, भटकती आत्माएं, तो उस समय आपको देना होगा। पर देंगे तब जब आपके पास होगा ना, तो इसीलिए अभी फिर भी समय है। अभी जो नए आते हैं इसलिए बाबा उनको कहते हैं लेट का बोर्ड तो लग गया है, पर टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, यानी अभी बहुत देर हो गई, क्योंकि बहुत देर हो गई तो शटर्स क्लोज, कोई टिकट लेनी है, कुछ लेनी है, अभी पूरा हो गया और खिड़की बंद हो गई, फिर आएंगे तो क्या होगा, टू लेट, देर से आ गए, पूरा हाउसफुल हो गया, अभी नहीं मिलेगा। तो अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि अभी तक सब कुर्सियां खाली है। कौन सी कुर्सियां? म्यूजिकल चेयर्स खेल होता है ना, वो जो क्या वो म्यूजिक का खेल जिसमें सब बहुत कुर्सियां होती है और रोज गोल 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 घूमना होता है, म्यूजिक बजता रहता है, अब एक भी कुर्सी भरी नहीं है, क्योंकि सबको चलना है जब तक म्यूजिक बंद हो। तो बीच में ऐड होते जाते हैं, जैसे मैराथन रेस भी होती है, बहुत लंबी रेस है, स्लो मैराथन, तो बीच में ऐड होते जाते हैं। तो चलो ऐड होते गए होते गए, और उसमें अंत में कौन पहुंचेगा जो लगातार चलता रहा, और उसमें भी फिर ऑब्स्टिकल रेस आती है, जो रेसेस होती है ना उसमें ऑब्स्टिकल रेसेस आती है, बीच बीच में कुछ आते हैं जिनके उनको कवर करना है, वो गनी बैग पहन के करना है, वो नींबू ये क्या कहते हैं चम्मच में लेके जाना है, सुई में धागा डालना है, तो बीच बीच में भी कुछ न कुछ डालते हैं ताकि उसमें भी कौन परांगत है, माना उसके अंदर भी किसके अंदर ये कला विशेष है कि वो डाल सके तुरंत और भागे, वो अपने आप अंदर एकाग्रता हो और भागे, मतलब उसके लिए फिर और प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए, खाली दौड़ भी नहीं है। तो ये बीच बीच में विघ्न भी आते हैं। तो कई बार एक बार मेरे से किसी ने पूछा, बहन जी ये जो विघ्न आते हैं ये विघ्न कौन भेजता है, क्या बाबा भेजते हैं? हाँ, कि मेरे बच्चों की परीक्षा ले, वो तो जो रेस कराने वाले वो विघ्न डालते हैं, भाई सुई में धागा डालो या ये गनी बैग पहन करके दौड़ो या ये स्पून और नींबू का ये खेलो या जो कुछ भी बीच बीच में विघ्न डालते हैं और उसमें आपको विजयी बनना है, जल्दी करके आगे जाना है। तो ये जो विघ्न आते हैं, चाहे परिवार से विघ्न आते हैं, चाहे और बातों से विघ्न आते हैं, तबीयत के, शरीर के, मन जो भी आता है, इसके कौन भेजता है? तो बाबा भेजता है। तो हमने कहा बाबा क्यों भेजेगा, ये तो बाबा तो नहीं, खबर बाबा कई बार कहते हैं बच्चों की परीक्षा लेता हूँ, तो ये परीक्षा बाबा लेते हैं या फिर माया लेती है? कौन लेता है? माया लेती है। बाबा कई बार माया के लिए भी कहता है कि माया को मैं भेजता हूँ, कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चों की परीक्षा लो, तो क्या माया लेती है या फिर आपके ही हिसाब किताब है? हैं? या हिसाब किताब है इसीलिए माया लेती है? क्या कहेंगे? हिसाब के माया भी क्या है बाबा, तो ये भी बाबा का प्यार है। अगर बाबा कहते ये माया दोषी है, माया ये करती है, माया की बॉक्सिंग है, हा? माया दुश्मन क्या करेगा? पहले तो माया क्या करती है, बाबा कई बार वर्णन करते हैं मुरलियों में, पहले तो माया क्या करती है, थप्पड़ लगाती है, थप्पड़ लगाती है ना, या चोटी पकड़ती है, चोटी पीछे से पकड़ती है, थप्पड़ लगाती है, गिरा देती है, न जाने बाबा क्या क्या कहते हैं, बेहोश कर देती है, फिर बाबा कहते मार डालती है, माया वो भी कर देती है। तो वास्तव में माया है क्या चीज? ये है तो हमारी कमजोरी ना, और तो कुछ नहीं है। पर फिर भी बाबा बच्चों को दोष न दे करके किसको दोष देते हैं? माया को, क्योंकि ये भी बाबा का प्यार है। तब उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो चलना सीख रहा है, उसको दिल होती है मैं चलूं, अब चलना तो आता नहीं है, तो उठ के खड़ा हो जाता है और टांगे तो थोड़ी कमजोरी है तो हिलता भी है, और माँ कहेगी हाँ चलो चलो चलो, हाथ पकड़ती नहीं है, छोड़ दिया भाई अपने आप चलेगा, और वो गिर जाता है, समझो गिर गया। अब माँ क्या करेगी, बच्चे को थोड़ी दोष देगी कि तुम क्यों गिर गए, वो क्या करेगी, धरती को मारे, अच्छी धरती तो मेरे बच्चे को गिरा दिया है, तो बच्चा खुश हो जाता है, वाह ये मेरा कसूर थोड़ी है जो मैं गिरा, ये तो इसका धरती का कसूर है, परंतु ये माँ का प्यार है ना, प्यार के खातिर, बच्चे की खुशी के खातिर कि बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है। तो परंतु इसका उल्टा एडवांटेज हम क्या लेते हैं दुनिया में, हम देखते हैं कि जो बचपन में सिखाया गया ना, माँ कहेगी इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, तो बड़े होकर के भी हम यही दोष देते, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण या ये हुआ, और हम लोग क्या कहते हैं, इसके कारण मत कहो, तीन कारण हम खुद हैं, दोषी कौन है? तीन गुना तो हम है, वो चलो एक गुना होगा, इसलिए हमको बदलना है, हम दूसरे को दोष देते रहेंगे हम कब बदलेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते माया भी मत कहो, माया क्या है, ये तो हमारी अपनी कमजोरी है। तो इसीलिए माया माया कह करके भी उसी अभिमान में न रहो या हीनता की भावना में न रहो, पर स्वमान में रहो, जो भगवान हमको स्वमान दिलाते हैं, रोज नए नए स्वमान देते हैं, जैसे सवेरे बाबा की ये मुरली चलती है, हर मुरली में कोई न कोई बाबा स्वमान देते ही है, और हर अव्यक्त मुरली में कितने स्वमान मिलते हैं, शुरू का एक पहला वाक्य वही स्वमानों से भरा हुआ वाक्य है। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, पूरी लाइन कौन से डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं। अब कई बार मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, मुझे ट्रांसलेशन करना होता है, मैं ट्रांसलेशन करती हूँ ऊपर बैठ करके, बाबा की जो अव्यक्त मुरली चलती है वो मैं ट्रांसलेट कर, तो सारे विश्व में जाती है मुरली आवाज, तो बाबा की आवाज बैकग्राउंड में होती है, मेरी आवाज सबको पहुंच सके, इंग्लिश में उनको सुना, हिंदी तो समझेंगे नहीं। तो मैं अब इतना बड़ा वाक्य होता है, छोटे छोटे वाक्य ट्रांसलेट करना बड़ा सहज है, छोटे छोटे होते हैं, अब इतना लंबा वाक्य होता है, पहले बाबा डैश 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 बच्चों को अभी देख रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या आएगा, क्रिया कौन सी आएगी ये पता नहीं चलता ना पहले वाक्य में, क्योंकि वो आखिर में आता है, हिंदी व्याकरण में जो क्रिया है वो अंत में आती है, बाबा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, पर इंग्लिश में वो पहले आता है, बाबा इज लुकिंग एट। तो अभी अगर मैं कहूँ बाबा डैश 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 चिल्ड्रन इज लुकिंग एट, वाक्य ही नहीं बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, वो सारे जो भी समान है ना वो सब लिखने पड़ते हैं, क्योंकि बाबा अंत में क्रिया बताएगा, वर्ब बताएगा कि क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सुना रहे हैं या जो भी। तो वो जैसे मैं लिखती जाती हूँ मेरा नशा चढ़ता जाता है, बाबा मुझे ही कह रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं, कौन सी आत्मा को बाबा देख रहे हैं, फिर बाबा का आता है देख रहे हैं, तो फिर मैं पहले सेंटेंस का वो क्रिया बताकर इंग्लिश में फिर सारा बताती हूँ, फट 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 बोलना पड़ता है क्योंकि बाबा का दूसरा वाक्य आ जाता है। लेकिन मेरा भाव क्या है कहने का, कि वो नशा चढ़ जाता है, जैसे बाबा कहते लिखती जाती हूँ उस नशे में, उस समय इंग्लिश भूल जाती हूँ, पर फिर बाद में याद आ रही भाई मुझे तो ट्रांसलेशन करना है। तो बस जो कानों में गया वो मुख से निकला। तो कई मेरे से पूछते हैं कि बाबा जो सुनाते आप मुख से सुनाते तो अंदर भी जाता है या खाली मुख से निकल जाता है। मैंने कहा पहला वाक्य तो सीधा अंदर जाता है क्योंकि वो नशे का वाक्य होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये सम्मान देते हैं। तो आज का सम्मान तो आपको बहुत ऊंचा मिला। मैं कौन हूँ? शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो ये नहीं सोचो मैं तो नहीं हूँ अभी इतनी, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, पर उस पुरुषार्थ के लिए ये स्वमान हो तो उसी अनुसार पुरुषार्थ चलेगा। कि अगर मन में कोई ऐसा अशुद्ध विचार आया भी तो मैं कौन हूं, उसी नशे में रहो, तो वो जो विचार अगर आया भी वो एक सेकंड में चला जाएगा। अगर मन अशांत हुआ भी पर भी स्वमान आया वो विचार चला गया, अगर थोड़ा गुस्सा आया भी अंदर में वो स्वमान आया तो चला गया। तो वो स्वमान और अभिमान ये मन उसका धर्म क्षेत्र है, लेकिन जीत किसकी होनी है, हा? धर्म की या अधर्म की? धर्म की होनी है। जीत तो दिन की होनी है, रात की नहीं। जीत तो सत्यता की होनी है, असत्यता की नहीं। तो जो मेरे अंदर कमियां कमजोरियां वो तो सब असत्य है ना, मेरी सच्ची शक्ति तो मेरा स्वमान है। तो इसी स्वमान जो आदि का सो अंत का, मैं कैसी आत्मा हूँ ये रोज अलग अलग स्वमान धारण करेंगे तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी। तो माया क्या है? कुछ नहीं है, कागज का शेर। बाबा कहते हैं वो भी क्या है, कागज का शेर है या चूहा है या वो भी मरा हुआ है, क्या है जी, क्या कागज का शेर है या चूहा है या वो भी मरा हुआ चूहा है? कुछ भी नहीं है, ये तो भ्रम है, माया माना ही भ्रम, जो अज्ञान है। तो वो तो सत्य है ही नहीं, पर मैं आत्मा सत्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं एक शिव शक्ति हूँ, मैं दिव्य स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये स्वमान सदा अंदर में धारण होता रहे तो माया तो दूर से ही सलाम कर देगी, भाग जाएगी। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत दिल का धन्यवाद सभी की तरफ से आदरणीय दीदी जी को।
मैं आत्मा हंस बन गई, हंस हरे।